निर्मल बुद्धि करो विचार पर की वस्त नहीं हृदय धार। निर्मल बुद्धि से विचार करो। निर्मल बुद्धि किसको कहते हैं? जिसमें संसारी मोह का मन नहीं होता, अर्थात जिसकी बुद्धि में ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है या जो आध्यात्मिक निर्णय है जिसके बारे में वाणी हमको गाइड कर रही है, विचार करने से जिस बुद्धि में ये निर्णय बड़ा स्पष्ट हो जाता है उसको निर्मल बुद्धि कहते हैं। तो निर्मल बुद्धि से क्या विचार करना है? पर की वस्त नहीं हृदय धार। मैंने अपनी वस्तु पर दिल नहीं लगाया है, दूसरे की वस्तु को अपनी समझकर मैंने उस पर अपना दिल लगा रखा है, अपना मन लगा रखा है। ये मेरे जीवन की अनधिकार चेष्टा है और जिस पर मेरा अधिकार ही नहीं है उसको मैंने अपना अधिकार समझ लिया, इसीलिए मैंने ये विचार करना है कि गलती कहाँ हो रही है। तो वाणी तो बड़ा स्पष्ट निर्णय दे रही है, तन मन धन तेरा कुछ नहीं, हृदय खोज सुख सार लखाई। तन को मैं अपना स्वरूप समझता हूं या तन मेरा है, मन को भी मैं अपना ही समझता हूं, मेरी इच्छा है, मन में इच्छा होती है, मैं क्या कहता हूं, मेरी इच्छा है, और इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊं, नहीं पूरी होगी तो मैं दुखी हो जाऊं। तो तन भी मेरा है, तन स्थूल शरीर है, मन भी मेरा है, मन सूक्ष्म शरीर है, दोनों ही शरीर, ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं करते, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, अर्थात खाने का प्रभाव भी मेरे मन पर पड़ता है। जैसे मैं खाना खाता हूं क्या होता है, शरीर के अंदर उसका लिक्विड तैयार हो जाता है, उस लिक्विड से फिर क्या होता है, खून तैयार हो जाता है, खून से फिर फैट तैयार हो जाता है, फैट से फिर बोन तैयार हो जाता है, सारी प्रक्रिया शरीर की चलती है खाने पर। तो उसका एक भाग मन में भी चला जाता है। सत्पुरुष जो है, जो आध्यात्मिक जो पुरुष है, वो इस रहस्य को जानते हैं, जो भी खाते हो जिसका प्रभाव तुम्हारे तन पर पड़ता है साथ में मन पर भी पड़ता है। इसी माझी करें प्रेमी, ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही अन्न खरीद कर ग्रहण करना चाहिए। बेईमानी से कमाया हुआ धन तेरे मन और तेरी बुद्धि को दोनों पर नष्ट कर दे। यहां के पता लगता है कि सतोगुणी आहार क्यों जरूरी है, तमोगुणी और रजोगुणी आहार मनुष्य के लिए क्यों घातक है, क्योंकि वो मेरे मन को चंचल कर देगा और सतोगुणी आहार मेरे मन को शांत रखेगा। तो मन इस तन से अलग नहीं है, जैसे खून शरीर से निकल भी जाता है और नया बन भी जाता है, फिर भी खून शरीर का अंग पार्ट है, बिना खून के शरीर रह नहीं सकता। उसी प्रकार बिना मन के भी शरीर नहीं रह सकता। तो मन कैसा चाहिए मुझको, ये तो अध्यात्म विद्या सिखाती ना, तो संसार तो सिखाते नहीं। तो मन मेरा सूक्ष्म शरीर है, सारा जीवन तो मेरा मन पर ही निर्भर करता है, मन के लिए ही मैं जीता हूं। तन का क्या करोगे, मन की इच्छा पूरी करने के लिए ही तो आप तन का उपयोग करते हो। तन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है जिसके द्वारा आप मन की इच्छा पूरी करते हो, और ऐसी स्थिति भी एक दिन आ जाती है मन की इच्छा पूरी ना हो तो इस तन को आप नष्ट भी कर देते हो, जिसको हम आत्महत्या कहते हैं। तो कहां व्यक्ति का यह ध्यान रहता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मन की इच्छा पूरी ना होने पर मैं तन को ही नष्ट कर दे रहा हूं, इसका मतलब तन से ज्यादा तो मन की पॉइंट से मेरे लिए, क्योंकि मेरी विचार करने की आदत ही नहीं, संसारी लोगों में मैं पलता हूं, इसलिए इन बातों पर मैं कभी ध्यान देता ही। लेकिन वाणी के और बात करिए, तन मन धन तेरा कुछ नहीं, ना तन तेरा है, ना मन तेरा है, ना धन अर्थात जो बाहरी संपत्ति है, जो सुखे साधन है वो सारा धन है, ना तन तेरा है, ना मन तेरा है, ना धन संपदा अर्थात संसार तेरा है, तेरा कुछ नहीं, तो किसका है फिर? वर्तमान शरीर मेरा खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, फिर मेरे बारे में तो सारा विज्ञान, इस देह के मरने के साथ मेरी मृत्यु नहीं होती, और जो जीवन भर मैंने जिस प्रॉपर्टी की कमाई की है, जिसके द्वारा मैं सुख और दुख भोगता हूं, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे मन में संग्रहित हो जाती है, मन के अंदर पूरा का पूरा संसार जो कुछ भी मैंने भोगा है वो मेरा संस्कार रूप में बच जाता है, सारी इच्छाएं जो वासना करके कहते हैं वो भी बच जाती है, मन में सब सुरक्षित रहते हैं, और मैं सारी जिंदगी मन के विज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करता, किसी यूनिवर्सिटी में कहीं भी मन का विज्ञान पढ़ाया नहीं, तन का विज्ञान पढ़ाया, इसीलिए मन का विज्ञान केवल सतपुरुष पढ़ाते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, अध्यात्म विद्या उनको पढ़ाते हैं, तो मेरा जीवन वास्तव में मन पर निर्भर करता है, मन के लिए मैं जीता हूं, लेकिन वह मेरे अंदर यह बना रहता है मैं तन के लिए जी रहा हूं, तो पूरा जन्म मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी मैं कैसे दोनों हाथों से बर्बाद करता हूं, अपने बारे में ही मैं कुछ नहीं सीखा, सारी जिंदगी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े सीईओ पढ़े हुए हैं, लेकिन अपने बारे में दो पैसे की अकल नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी बेचैनी का कारण क्या है, मेरे जीवन का स्रोत क्या है, कुछ नहीं पता मुझे, केवल नकल करके जैसा जो मुझे पसंद आता है वैसा मैं बनने की कोशिश करता हूं, ये मेरे जीने का तरीका है। तो वाणी आपको याद दिला रही है कि तन मन धन तेरा कुछ नहीं, क्यों नहीं है तेरा? क्योंकि इस मानव देह जब तुझको मिली ईश्वर ने दी, मैंने तो नहीं बनाई ना अपनी देह, ईश्वर ने मुझको दिए, और खाली देह ही नहीं दिए, इस देह का कारणकर्ता भी वो स्वयं ही है, मनुष्य जन्म मुझको मिला, जैसे कर्म किए थे, जैसे संस्कार बनाए, उसके अनुसार ही मैं यदि मानव देह का पात्र हूं तो प्रभु मुझको मानव देह देंगे, प्रभु देंगे ना, मैं अपनी देह को तैयार नहीं कर सकता, तो प्रभु ने जब तन दिया तो मन भी तो उन्होंने दिया, क्योंकि तन जहां है वहां मन जरूर हो, ऐसा शरीर नहीं होता जहां मन ना हो, और जब तन और मन है तो बाहर संपत्ति भी होगी, घर भी होगा, कोई बाहर का संसार वातावरण भी होगा, कपड़े भी होंगे, लोग भी होंगे, तो तन मन धन ये तीनों का दाता कौन है? प्रभु है, क्योंकि संसार है तब आप रहोगे ना इसके अंदर, और किसी से भी पूछ लो कि ये जो संसार है जिसमें मेरा शरीर पल रहा है, किसी मनुष्य ने बनाया है इसको? जो बिल्कुल अनपढ़ है उससे भी पूछ लो, वो यही कहेगा नहीं भैया मनुष्य ने तो संसार नहीं बनाया, संसार तो प्रभु ने ही बनाया। तो विचार से पता लगता है कि वास्तव में तन मन धन तेरा कुछ नहीं, जब है तेरा कुछ नहीं तो संसार में तो क्यों भटक रहा है, उस प्रभु की बात क्यों नहीं मानता? वो प्रभु क्या कह रहे हैं? हृदय खोज सुख सार लगा, तो इस तन में बड़ी कीमती चीज है जिसका नाम वो हृदय कह रहे हैं, हृदय खोज सुख सार लखाए, सारे सुखों का सार, जैसे फल का सार क्या होता है? उसका जूस, तो ऐसे ही सारे सुखों का सार क्या है? वो जीवन शक्ति है जो इस देह को जिंदा रखे हुए है, वो सुख का सार है, क्योंकि वो जब तेरी बुद्धि जब उसको अनुभव करती है, तेरे अनुभव में वो जीवन शक्ति जीवन सत्ता आती है, तब तुझको इस बात का एहसास होता है कि संसार की एक भी वस्तु इस समय मुझको परेशान नहीं कर रही, दुनिया की कोई ताकत मुझको सुखी कर ही नहीं सकती। यदि आज मैं सुखी हूं तो मैं उस अंतर से देह के अंतर्गत जो वस्तु है जिसको हृदय कह रहे हैं वो मेरे शांति का, मेरे सुख का, प्रसन्नता का वो स्रोत है, वो खजाना है। तो मैं अपने अनुभव से ही इस बात को जानता हूं कि तन मन धन के चक्कर में जो सारी जिंदगी में पड़ा रहा और लोगों की नकल कर करके मैं उसी को सीखता रहा, तो अब जब मैंने गुरु की बात सुनी, वाणी की बात सुनी, ईश्वर की बात सुनी, उस पर मैंने अपनी बुद्धि लगाई, तब मुझको समझ में आ रहा है अरे संसार में तो भटकना ही भटकना है, कहीं कोई शांति है, कहीं कोई चैन है तो इस देह के अंदर है। कहाँ है? जहां प्रभु खुद निवास करते हैं, उसका नाम हृदय। इस बात के लिए वाणी करिए, निर्मल बुद्धि करो विचार। निर्मल बुद्धि से इस बात का विचार करो, और क्या, पर की वस्त्र नहीं हृदय धाम। ये जो शरीर है ये पर की वस्तु है, दूसरे की वस्तु है। तो दूसरे की वस्तु पर यदि आप कब्जा कर लो तो चोर आप कहलाओगे नहीं कहलाओगे? तो ये वस्तु पर की है अर्थात तो दूसरे की है। कौन दूसरा है? वो ईश्वर है। इस देह का कारण करता वो है, इस देह को जीवित वो रखे हुए है, इस देह को प्राण के अनुसार चला वो रहा है। मैं तो कुछ जानते ही नहीं, तो 100% मेरी देह प्रभु के हाथ में है, प्रभु की वस्तु है। इसलिए मैंने ये सीखना था कि प्रभु इस देह से क्या करने को कह रहे हैं, कैसे संसार में जीवन व्यतीत करने को कह रहे हैं। इसलिए जब वो प्रभु अवतार लेकर धरती पर आते हैं ये दिखाने के लिए कि तूने क्या संसार में आकर करना है, तो अवतार का क्या काम होता है, चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए कोई भी आए, सारे अवतार एक ही काम करते हैं कि दूसरे के लिए वो जीते। महाराज जी का जीवन देख लो, नजदीक का ही, कहीं ऐसा लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए उन्होंने जीवन व्यतीत किया? सारा जीवन जब उनको प्रभु प्राप्ति हो गई, मोक्ष स्थिति उनको प्राप्त हो गई, तो शरीर का जो प्रारंभ है, चाहे गुरु का शरीर है या साधारण जीव का शरीर, तो उस शरीर का वो क्या उपयोग कर रहे हैं? केवल प्रभु का संदेश देने के लिए, लोक कल्याण के लिए। जो संसार में लोग हैं वो कैसे दुख से बचे, वो साधन सिखाने के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया। तो गुरु के शरीर को देखकर आप ये निर्णय कर सकते हो कि उनका शरीर पर की वस्तु था, अर्थात वो ईश्वर की वस्तु था, मेरी वस्तु नहीं था। उन्होंने अपने शरीर से कोई संसार का सुख नहीं भोगा, ना खाने का, ना पीने का, ना घूमने का। उनको पूरा बोध था ये पर की वस्तु है, अर्थात ईश्वर की वस्तु है, ये ईश्वर के कार्य के लिए मिली है। इसलिए जैसा प्रभु वाणी के रूप में विचार भी तो मुझको दे रहे हैं, मेरे कालखंड में, मेरे जीवन काल में ही तो मेरे लिए वाणी आई है। कौन सिखाएगा आपको? ईश्वर से ज्यादा एग्जैक्ट चीज मेरे बारे में, मेरे भले के लिए कौन सिखा सकता है? तो ये वाणी तो मेरे जीवन के लिए पैनेशिया था, अमृत था ये, और इसको मैंने ऐसे रख दिया। हाँ पढ़ लेता हूं, ये वाणी आपको 5 लाइनें क्या सिखा रही है? मैं ऐसे पढ़ लेता हूं, मैं रोज वाणी का पाठ कर लेता हूं। बुद्धि भगवान ने तुझको दी थी, इसको तेज करना था, इसे रहस्य सीखना था। अब देखिए इसी हृदय को महर्षि रमण क्या कह रहे हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं। एक दिन की बात है, वो जब पहाड़ पर रह रहे थे गुफा के अंदर, त्रिभुवन मलाई में जो अरुणाचल हिल है, तो एक दिन उनके 2-3 साथी जो थे वो भी सारे योगी थे, पहाड़ पर ऊपर जा रहे थे गुफा की तरफ। रास्ते में क्या हुआ, उनके एकदम से चक्कर जैसा आया, और ऐसा लगा ये शरीर अब गिरने वाला है। अब वो वही एक लगा के बैठ गए, बाहर का होश गायब हो गया। धीरे धीरे शरीर नीला पड़ने लगा, उनके साथ जो लोग थे वो रोने लगे, महर्षि तो खत्म हो गया। अंदर से उनको होश है, होश में आने के बाद उन्होंने खुद बताया कि अंदर मुझे पूरा होश था कि ये रो क्यों रहे हैं, मैं तो मरा नहीं, मैं तो जीवित हूं, लेकिन शरीर की धड़कन बंद है, श्वास बंद है। जब धड़कन बंद है तो खून का दौर भी बंद हो जाएगा, तो बाहर से तो शरीर मृत ही नजर आएगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि अंदर से कि मैं बोल नहीं पा रहा, उनको कह भी कुछ नहीं पा रहा, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं तो मरा नहीं हूं, ये रो क्यों रहे हैं। तब उन्होंने कहा कुछ देर बाद मेरे चेस्ट का जो सेंटर होता है उसके दाहिनी ओर से एक प्रकाश जैसा आया और मेरे हार्ट में वो उसने प्रवेश किया और हार्ट चलना चालू हो गया। अब बताइए जीवन इस शरीर में है या जीवन ईश्वर में है। तो वो जो जीवन शक्ति का स्रोत है वास्तव में अध्यात्म में उसको हृदय है। तो साधना के बल पर मैं एक दिन उस स्रोत की अपने देह के अंदर ही खोज करने में सफल हो जाता है। अब तब बताइए जो जीवन का स्रोत है वो स्रोत मैं खुद बन जाता हूं, फिर मौत का है, किसकी मौत है बताइए। महर्षि की खुद की मौत है, दुनिया वाले क्या समझेंगे मौतों। तो सत्पुरुष के जीवन से ही इन रहस्यमयी बातों का पता लगता है, कोई थ्योरी नहीं है, वाणी के अंदर कोई थ्योरी नहीं है, 100% प्रैक्टिकल बात है, अनुभवी बात है, अनुभवी वाणी। मां जी कहते हैं प्रेमी है अनुभवी वाणी, ये बुद्धि के लेवल से वाणी नहीं आई है, ये प्रभु से सीधी आई है, ये प्रभु की आवाज है। और मैं मूर्ख बड़ा बुद्धिमान संसार में बनता हूं, बड़ा शरीर दिखाता हूं लोगों को, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं बड़ा धनी आदमी हूं, क्या दिखा रहा है तू, इस जड़ देह को दिखा रहा है जिसका मालिक भी तो खुद नहीं। तो सत्पुरुष मेरी आंखें खोलना चाहते हैं कि ये पर की वस्तु है, देह पर की वस्तु है, तन मन धन तेरा कुछ नहीं, हृदय खोज सुख सार लखाई। मनुष्य जन्म को इस काम के लिए मिला था, तूने पर की वस्तु को अपना बना के दिखा लिया तुमने, तो मन की वासना बढ़ाया जा रहा बढ़ाया जा रहा। तो जो तेरे मौत का सामान है उसको तो जीवन का लक्ष्य बना रहा है, जो होश ही नहीं इस बात। इसी वाणी आगे कह रही है प्रभु की दात प्रभु चरणी सौंप, झूठ मोह की त्यागो चौंक। प्रभु की दात, ये प्रभु ने दिया ना शरीर, ये प्रभु की दात है, तो जो देता है वही उसका मालिक होता है। तो इस देह का मालिक प्रभु है, प्रभु की दात प्रभु चरणी सौंप, तो प्रभु के चरणों में कैसे सौंपेगा इस देह को। जिस प्रकार प्रभु ने मेरी देह बनाई, मेरे लिए संसार बनाया, क्यों बनाया, ताकि मैं मनुष्य जन्म प्राप्त करके दुख से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। ये काम कैसे होगा, ये काम तब हो सकता है जब अंदर तो तू प्रभु की याद कर और शरीर और मन से तू संसार की निष्काम सेवा अर्थात प्रभु का कार्य कर, प्रभु की देह। पिता यदि बच्चे को अपने युवा बेटे को 1000 रुपए दे दे और कह दे भी देखो जो भूखा हो जो नंगा हो उसके लिए तुम सहायता कर देना। अब पिता ने यदि बच्चे को दिया वो बच्चा 1000 रुपए खुद खा जाए तो क्या कहोगे आप, ये पापी बच्चा है, ये सुपुत्र नहीं है, ये कुपुत्र है। तो प्रभु ने मानव दे दी थी कि प्रभु की दात है, उसको मैंने प्रभु को ही सौंपना था। तो प्रभु को कैसे सौंपोगे? प्रभु की याद करोगे इस देह के अंदर रहकर, और इस देह के द्वारा प्रभु के संसार की निष्काम सेवा। झूठ मोह की त्यागो चौंक, तूने जो ये चौंक पर था जो लगन है, झूठ मोह क्यों? कि मैंने इस देह को अपना स्वरूप समझ लिया, ये झूठा मोह है। मानव जन्म लेकर इससे बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती कि सारी जिंदगी मैं अपने आप को देह समझता हूं जो मैं हुई नहीं। इस करके मैंने जो मन लगा रखा है इसमें मैंने लगन नहीं लगाना है, मैंने मन ईश्वर के नाम में लगाना था जिसमें जीवन है, जो मेरे जिस्म की जान है मैंने मन उसमें लगाना था। उसका शौक, उसकी लगन मेरे अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन अज्ञानता के कारण मैं लोगों की नकल करके सीखता हूं, इसीलिए जैसा लोग कर रहे हैं वैसा मैं भी कर रहा हूं। एक कहावत आती ना प्राणी, इस दुनिया में सब चोर चोर, सारे चोर हैं, कोई छोटा चोर है कोई बड़ा चोर है। तो हम अज्ञानी मनुष्य बार बार वही गलती करते हैं कि प्रभु की वस्तु को मैंने अपना स्वरूप समझ लिया। प्रभु की वस्तु है, जैसा वो कर रहे हैं मैंने उसका वैसा सदुपयोग करना था। आगे कह रहे हैं, सकल पाप का मूल है ये ही, प्रभु की वस्तु अपनी कर ले। सकल पाप, मनुष्य जन्म में जब आप कुछ का कुछ समझकर जी रहे हो, अध्यात्म विद्या का आपको पता ही नहीं कुछ भी, क्या निर्णय है प्रभु का, संसारियों के क्या निर्णय है, उसके अनुसार में संसारी जीवन व्यतीत कर रहा, तो ये सकल पाप का मूल है ये। तो मैं पूरे जन्म में केवल पाप कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि वाणी जैसा एनालिसिस दे रही है कि शरीर की रचना पांच तत्व से हुई है, पांच तत्व से बाहर की प्रकृति बनी है, पांच तत्व से ही ये देह बनी है, क्योंकि देह इस प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंग है। तो पांच तत्व का ये पांच गुण है या अवगुण है या विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मेरे सारे सामाजिक व्यवहार में, पारिवारिक व्यवहार में ये पांच अवगुण प्रकट होते हैं व्यवहार के द्वारा। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अहंकार बहाने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता, कितना फैशन करता हूं, क्या क्या दिखाता हूं लोगों को, देखो मैं कितना सुंदर हूं। अब यही तो करते हो, क्या करते हो? जो पाप है उसको मैं बढ़ा रहा हूं और दिखा रहा हूं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है तब ये पता लगता है कि मेरी बुद्धि तो मारी गई, कहां का बुद्धिमान मन मनुष्य हूं, मैं तो अज्ञानी मनुष्य। वाणी साफ कह रही है कि जो प्रभु की वस्तु को अपनी वस्तु समझ रहा है वो पापी है। तो सकल पाप का मूल है यही, ये सारे पाप की जड़ है। तेरे प्रभु की वस्तु अपनी कर, तो प्रभु की वस्तु थी ये शरीर जिससे तूने निष्काम सेवा करनी थी, प्रभु की भक्ति करनी थी, तूने अपना स्वरूप समझ लिया उसको, अपनी करनी। तो फिर मेरे जीवन में कितने पाप होते हैं, अनगिनत पाप होते हैं, लेकिन मैं क्या समझता हूं किसी की जेब काटनी वो तो पाप है, वैसे कोई पाप नहीं। तो पाप की परिभाषा मेरी अलग है, शास्त्र पाप की परिभाषा तो दूसरी कह रहा है, वो तो सारे जीवन को ही पाप कह रहा है। यदि तुझको अपने जीवन में ईश्वर का होश नहीं है, ईश्वर तेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, तूने इतना भी नहीं सीखा कि मनुष्य जन्म ईश्वर को लक्ष्य बनाकर उस तरह से जीने के लिए मिला, वो मेरा ईश्वर लक्ष्य ही कभी नहीं बन पाया। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं, बेईमानी नहीं करता, लोगों की सेवा भी कर लेता हूं। अरे तेरा लक्ष्य तो बने पहले, लक्ष्य का मतलब क्या है, तेरी बुद्धि की समझ तो ठीक हो, इतना बुद्धिमान अपने आप को बनता है, इतना सदाचारी दिखाता है दूसरों को, लेकिन तेरा लक्ष्य ही कुछ नहीं बना है, शरीर से ऊपर तेरी सोच ही नहीं बनी है, वैसे कर क्या रहा है। इसलिए वाणी के अर्थ साधारण नहीं होते, वाणी बड़ी गहरी होती है। हम लोग मेहनत नहीं करते हैं उसको उसी प्रकार समझने की जैसा वाणी हमको आदेश दे रही है या संदेश दे रही है। तो इसीलिए अंतिम बात वो कहते हैं, मूल जिया तू क्यों भरमाया, पर की वस्त संग हेत जो पर। तू भरमा रहा है जीव, तू भरमा रहा है संसार में, क्यों भरमा रहा है, पर की वस्त संग हेत जो पर। ये देह पर की वस्तु थी, अर्थात ईश्वर की वस्तु थी, ईश्वर के अनुसार कहने के अनुसार मातृशा अनुसार तूने इस देह का सदुपयोग करना था और तूने इसके साथ अपना दिल लगा लिया कि मेरी है, मेरा स्वरूप है, इसके द्वारा मैं सुख भोगूंगा, इस देह को सुखी करूंगा। तो ये मैंने जो अपना दिल लगा दिया से, इसे हेत बना लिया, इसे मोह बना लिया, ये रोज मुझसे पाप करवा रहा है, इसकी क्षमा कोई नहीं है, मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाता है। इसलिए याद रखिए, ये देह ईश्वर की वस्तु है, ईश्वर प्राप्ति के लिए मिली है, इसलिए मैंने सतमार्ग पर चलना ही चलना है, चाहे पूरी संगत मिलकर भी चले या नहीं चले, इससे मेरा कोई वास्तव नहीं, मैंने चलना जरूर है। इस निश्चय के साथ जो आगे बढ़ता है वो उसकी बुद्धि होश में रहती है और जीवन सफल कर लेता है। ओ,